ओम शांति, ओम शांति। आप सभी को ज्ञान सरोवर भट्टी में मजा आ रहा है। सभी बहुत अच्छी भट्टी कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही हम आए हॉल में तो हॉल के वातावरण से ही अनुभव हो रहा था कि कितना पावरफुल योग का वातावरण है यहाँ पर। तो योग लगाना मुश्किल लग रहा है, सहज लग रहा है? तो ऐसे वातावरण में योग लगाना नहीं पड़ता, अपने आप योग लग जाता है। तो यही भट्टी की विशेषता होती है। तो जैसे का विषय के बारे में सुना, प्यूरिटी। अभी हम रक्षाबंधन भी मनाने वाले हैं और हमारे जीवन की विशेष प्रतिज्ञा है बाबा से, और कहेंगे ब्राह्मण जीवन की विशेषता है या नवीनता है, श्रृंगार है या अलौकिकता है, वो पवित्रता है। और पवित्रता के कारण ही आदि से, ओम मंडली के टाइम से और आज तक, अगर कोई भी विघ्न आते हैं तो ज्यादा किसके कारण आते हैं? इस प्यूरिटी के धारणा के कारण ही आत्माओं को, जो भी बाबा के बनते हैं, उनको वो विघ्न सहन करने पड़ते हैं। तो इसीलिए बाबा को शुरू में ही कई लोग कहते थे, बाबा ये एक बात हटा दो आप, बाकी ज्ञान बहुत अच्छा है ना, लाखों करोड़ों आपसे सुनेंगे और लाभ लेंगे। तो बाबा ने कहा, ये मैं नहीं कहता हूँ, मैं तो खुद गृहस्थी हूँ, ये तो शिव बाबा जिसे नई पावन दुनिया बनानी है, ये उनका आदेश है। तो उनको पवित्र आत्माएं चाहिए। तो इसीलिए बाबा ने कभी भी प्यूरिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। और इसीलिए बाबा कहते हैं कि कुछ भी करना पड़े, भले ही कई बार परिवार भी टूट जाते हैं उसके लिए, इस धारणा के कारण, और कोई कारण नहीं बनता है। और तो बाबा सब हमें इतने दिव्य गुण देते हैं कि जो बिगड़ा हो वो भी सुधर जाए, लेकिन अगर कभी टूटा है कोई परिवार तो किसके कारण टूटा? सिर्फ पवित्रता की धारणा के कारण ही टूटा है। तो इसीलिए बाबा हमेशा प्यूरिटी को महत्व देते हैं, और इसकी पर्सनैलिटी मानी गई है, क्योंकि पवित्रता के कारण ही महानता है। गायन जो भी है, पूजन जो भी है, वो प्यूरिटी के कारण है। दुनिया में भी जो पर्सनैलिटीज गाई जाती हैं, आज शारीरिक पर्सनैलिटीज होती हैं, पोजीशन की पर्सनैलिटीज होती हैं, दुनिया में जो विशेष आत्माएं, महान आत्माएं देश विदेश में माने जाते हैं, उनको पर्सनैलिटीज कहते हैं ना। अगर किसी की शारीरिक पर्सनैलिटी है तो वो फिर कोई ना कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेंगे और फिर वो सारी दुनिया में नामी ग्रामी हो जाते हैं, जो भी वो मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स ऐसी ऐसी प्रतियोगिता जीतते हैं, तो वो पर्सनैलिटी बन जाते हैं, वैसे उनको कोई नहीं जानता है। और ऐसे ही जो पोजीशन में, पर्सनैलिटी में होते हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, तो सभी देशों के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति दुनिया में प्रसिद्ध होते हैं, सारा विदेश, सारी दुनिया उनको जानती है। तो उनमें क्या विशेषता होती है? तो जो भी पर्सनैलिटीज वाले होते हैं, वो कभी भी अपने समय और शक्ति को व्यर्थ नहीं गंवाते। उनका है ना मिनट टू मिनट प्रोग्राम होता है। कभी भी कोई भी वीआईपी आएगा ना, आप देखेंगे क्या होता है, उनका मिनट टू मिनट प्रोग्राम बना के देना पड़ता है। तो बिल्कुल फिक्स होता है अपनी दिनचर्या में, वो कुछ भी, एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करेंगे। तो बाबा कहता है, आप भी प्यूरिटी के पर्सनैलिटी वाले हो, आपकी भी पर्सनैलिटी कम नहीं है। वो दुनिया वालों की पर्सनैलिटी तो अल्पकाल की है, और हमारी प्यूरिटी की पर्सनैलिटी कब तक चलती है? पूरे कल्प चलती है। भले इस एक जन्म में हम अपनी, फिर से जो हम पतित बन चुके हैं, फिर से संगम युग पर हम थोड़ी मेहनत करते हैं और हम अपनी पवित्रता की धारणा को संपूर्ण पवित्रता तक ले जाते हैं, लेकिन एक बार हम पवित्र बन गए तो फिर सतयुग त्रेता युग दो कल्प आत्मा और शरीर दोनों ही नेचुरल पवित्र रहते हैं। तो देवी देवताओं की वो श्रेष्ठता है पवित्रता के कारण, इसीलिए द्वापर युग से उनका पूजन होता है। और बाबा कहता है पूजन भी कोई साधारण नहीं होता, दुनिया में ऐसा पूजन किसी का नहीं होता जैसा देवी देवताओं का पूजन होता है। हाँ, देवी देवताओं का पूजन बहुत विधि पूर्वक होता है, हर कर्म की पूजा होगी, उनको उठाएंगे, उनको खिलाएंगे यानी भोग लगाएंगे, है ना, फिर उनका श्रृंगार होगा, फिर उनको विधि पूर्वक सुलाएंगे, और फिर जो भी आरती करेंगे वो कीर्तन करेंगे, माना उनकी श्रेष्ठ कीर्ति का गायन होता है। आप और किसी भी धर्म नेता के स्थान पर चले जाओ, हाँ, वह शांति रहती है। चर्च में चले जाओ आप, संडे के संडे ही लोग आएंगे, है ना। ऐसे ही आप मस्जिद में चले जाओ, फ्राइडे उनका जुम्मे का दिन होता है, हाँ वही शुक्रवार, वही जुम्मे के जुम्मे ही लोग आएंगे, उनका एक दिन होता है, बाकी क्या रहता है, बिल्कुल शांति। या कोई त्योहार हो गया, ईद हो गया या कुछ हो गया, या ऐसे महात्मा बुद्ध के मंदिर में भी आप जाएंगे, तो जो सबसे ज्यादा विधि पूर्वक पूजा होती है वो देवी देवताओं की ही होती है। और उसका कारण है संपूर्ण पवित्रता, क्योंकि वो संपूर्ण निर्विकारी बने। और धर्म नेता ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं लेकिन संपूर्ण पवित्रता नहीं है, क्योंकि वो संपूर्ण निर्विकारी बने हैं, ऐसा नहीं है। और फिर वर्तमान जो संगम युग पर भी हम ब्राह्मण हैं, डायरेक्ट भगवान की ईश्वरीय संतान है, तो बाबा ने हमें ये कहा कि पवित्रता केवल ब्रह्मचर्य का पालन नहीं है, क्या है, ब्रह्मचारी बनना है, ब्रह्मा बाबा के आचरण पर चलने वाला, यानी जो ब्रह्मा बाप के संकल्प बोल और कर्म थे ऐसे ही हमारे भी संकल्प बोल और कर्म हो। बाबा ने जैसे सोचा, बाबा ने जैसे बोल बोले, बाबा ने जैसे कर्म करके हमको दिखाया, हमको फॉलो फादर करना है, बाबा के कदम पर कदम हमें रखना है, वो हमारी संपूर्ण पवित्रता की स्थिति होगी। और संपूर्ण निर्विकारी बनना तो केवल काम विकार पर विजय पाना नहीं, लेकिन उसके जो साथी हैं, अभी रविवार की मुरली, पिछले रविवार की मुरली चली ना, तो उसमें बाबा ने क्या कहा, उसके जो साथी हैं और उनके भी जो बाल बच्चे हैं, क्रोध, उसमें सबसे मुख्य साथी है क्रोध, तो क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, वैर भाव, आलस्य, ये सब पर विजय प्राप्त करना। और यहां तक कि स्वप्न में भी किसी आत्मा के प्रति ईर्ष्यावश या क्रोधवश व्यवहार ना हो, या स्वप्न में भी ब्रह्मचर्य व्रत भंग ना हो, तो वो संपूर्ण पवित्रता की स्थिति। फिर उससे भी आगे बाबा कहते हैं हमारी दिनचर्या में भी अलबेलापन ना हो, अगर आलस्य भी आया तो वो भी विकार का अंश है। तो दिनचर्या हमारी अमृत वेले से रात तक बाबा ने सेट करके दी हुई है ना, हमारा ये जीवन कैसे चलना चाहिए, पर हम कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं, कभी उड़ गए अमृत वेले कभी नहीं उठे, कभी सुन ली मुरली कभी नहीं सुनी, हाँ कभी बाबा को याद करके बाबा को भोग लगा के खाया, कभी ऐसे ही बिना उसमें जल्दी जल्दी खा लिया। तो क्या कर रहे हैं हम, थोड़ा अलबेलापन कर तो रहे हैं, चल तो रहे हैं, लेकिन अलबेले होकर के चल रहे हैं, एक्यूरेट नहीं चल रहे, तो वो भी अपवित्रता का अंश है। और उसमें भी आगे बाबा कहते हैं व्यर्थ संकल्प भी ना चले हमारे, अगर व्यर्थ संकल्प भी चलते हैं तो वो भी इम्प्यूरिटी है। और विकल्प तो और भी आगे की बात है, अगर हमें हमारे विचारों से दुख और अशांति का अनुभव होता है, अशांति किससे होती है, विचारों से ही होती है ना, क्यों क्या में हम चले गए, तो पवित्रता सुख शांति की जननी है। अगर पवित्रता है तो दुख अशांति हो नहीं सकती, वो आत्मा सदा सुख की स्थिति में, शांति की स्थिति में ही रहेगी। तो इसीलिए अगर व्यर्थ संकल्प भी चले तो वो भी इम्प्यूरिटी है। तो हम सभी पवित्रता का व्रत धारण कर लेते हैं, जैसे ही बाबा के बनते हैं हमें इसका महत्व समझ में आता है। तो जो असंभव समझती है दुनिया, उसे हमने संभव कर लिया। बाबा कहता है कि घर गृहस्थ में रहते हुए भी महात्माओं को भी चैलेंज करने वाले बन जाते हैं, क्योंकि वो समझते हैं घर गृहस्थ में रहने वाले तो पवित्र रह ही नहीं सकते, ब्रह्मचर्य का पालन कर ही नहीं सकते, लेकिन वो भी वो करके दिखा देते हैं। लेकिन क्या कमी रह जाती है? और सबसे बड़ी बात बाबा कहता है कि आपकी ये जो विशेषता है, ये जो आप कर पाते हो कलयुग में रहते हुए भी, अब ऐसा नहीं है कि हमारे आसपास का कोई वातावरण जो है या हमारे आसपास के जो लोग हैं अब वो हमें कोई सहयोग देने वाले हैं, बल्कि और ही आज का जो वातावरण है वो हमारी इस धारणा को कहीं ना कहीं कमजोर करने वाला है। लेकिन उस सब के बीच रहते हुए भी हम करते हैं, तो उसके लिए बाबा ने जो हमें सहज विधियां बताई हैं उससे हमारे लिए ये संभव हो गया। तो बाबा ने हमें कौन सी विधि बताई? सबसे पहली विधि कि हमें स्वयं का ज्ञान मिला कि मैं कौन हूं, आत्मा हूं, और मैं आत्मा स्वभाव से ही पवित्र हूं। मैं आदि अनादि शुद्ध और पवित्र आत्मा हूं। अनादि परम धाम में भी मैं आत्मा पवित्र हूं, और आदि स्वरूप में यानी अपने देवी देवता स्वरूप में भी मैं पवित्र हूं, और एक जन्म नहीं अनेक जन्मों तक मैं आत्मा पवित्र रही हूं। तो ये जो हमारा स्वरूप है पवित्रता का, जो हमें स्मृति में आया, इस स्मृति से ही हमारी समर्थि आ गई। हम जो है वो शक्ति के आधार पर, स्मृति की शक्ति के आधार पर इस पवित्रता के व्रत को पालन कर लेते हैं कि आत्मा रूप में तो हम सब भाई भाई हैं, और हर आत्मा का अनादि स्वरूप पवित्र है। बाबा ने तो हमें दैहिक दृष्टि से ऊपर उठा दिया, आत्मिक दृष्टि वृत्ति हमेशा हमें कैसे संपर्क और व्यवहार में आना है। तो दुनिया में भी कई बार लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, हम देखते हैं कई लोग जो सन्यासी हैं वो तो है ही हैं, और भी अगर सन्यासी नहीं है दुनिया में ही रहते हैं वो भी करते हैं। अभी हम जो स्पेशल अपने भारत में भी देखते हैं, जो पर्सनालिटी की बात हम करते हैं, तो जैसे हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, काफी सालों से वो ब्रह्मचारी के रूप में ही रहते हैं। राहुल गांधी हैं, उन्होंने तो शादी नहीं की, उसके पहले अब्दुल कलाम जी थे वो भी कुमार ही थे। ऐसे कई पर्सनालिटीज रही, अटल बिहारी वाजपेयी जो उसके पहले प्रधानमंत्री हुए, तो ये दुनिया में रहते हुए भी उनको अगर अपने जीवन में कोई लक्ष्य हासिल करना है, कोई उच्च लक्ष्य होता है किसी का, या किसी को ही लगता है कि मुझे समाज सेवा ही करनी है, उसके अलावा मुझे अपनी घर गृहस्थी नहीं बनानी है, तो फिर वो लोग करते हैं और वो अपनी कोई ना कोई विधि बना लेते हैं कि इस विधि के आधार पर हमें अपना ब्रह्मचर्य पालन करना है। सन्यासी तो बाबा कहता है ना, कई तो जो है वो स्त्री को मां समझते हैं, कोई जो है वो स्त्री का मुंह ही नहीं देखते हैं कि ना मुंह देखेंगे और ना ही बुद्धि जाएगी। तो हर एक अपना तरीका अपनाता है, लेकिन फिर भी वो कर लेते हैं। लेकिन जो हमारी प्राप्ति है वो परमात्मा विधि से होने के कारण सबसे ऊंची है। वो भले ही ब्रह्मचारी रहते हैं लेकिन उनको सतयुग का स्वराज्य या विश्व का राज्य नहीं मिलने वाला, क्योंकि डायरेक्ट परमात्मा विधि से वो पवित्रता का पालन नहीं कर रहे। लेकिन हमारी प्राप्ति बहुत ऊंची है, जो बताया कि दो युगों तक हमारी वो प्राप्ति चलने वाली है। तो इसीलिए हमारे लिए सहज हो जाता है कि हमें पता इतनी ऊंची प्राप्ति बाबा हमें करा रहे हैं कि सारे कल्प के लिए तो मान है ही है, पर साथ में विश्व का राज्य, हम विश्व राज्य अधिकारी बनने वाले हैं, देवी देवता बनने वाली आत्माएं हैं। तो इसीलिए मेहनत अगर थोड़ी हमें करनी भी पड़ती है तो वो हमें कोई मुश्किल नहीं लगता है। फिर हिम्मत रखते हैं हम तो बाबा की मदद भी मिलती है। ये हिम्मत रखी, बाबा कहते हिम्मते बच्चे मददे बाप। तो हमारे लिए इसमें संसार में रह करके बाबा के कार्य में सहयोगी बनना, बाबा कहते हैं आपको खुद को भी पावन बनना है और पूरे विश्व को भी पावन बनाना है और प्रकृति को भी पावन बनाना है ना। प्रकृति भी सतो प्रधान, आप आत्माओं के वाइब्रेशन से ही बनेगी। प्रकृति को कोई हम ज्ञान नहीं सुनाने वाले, लेकिन हमारी पवित्र दृष्टि वृत्ति कृति होगी, उसका प्रभाव किस पर पड़ेगा? प्रकृति पर भी पड़ेगा और प्रकृति भी उसी अपने आदि स्वरूप में आ जाएगी, सतो प्रधान स्थिति में आ जाएगी। तो इतनी बड़ी जिम्मेवारी भी बाबा हमें देते हैं। लेकिन अगर हम स्मृति से विस्मृति में आ गए, ये तो स्मृति है, तो विस्मृति में आ गए तो देह अभिमान में आना, बाबा कहते हैं ना कि माया देह अभिमान में ले आती है। और अगर देह अभिमान में आए और दैहिक दृष्टि हो गई, आत्मिक दृष्टि की बजाय अगर देह पे दृष्टि चली जाती है, तो फिर देह पे दृष्टि जाना माना, बाबा कहता है देह को टच करना माना जैसे सांप को टच करने के समान है। और सांप में विष होता है तो वो काटता है और वो विष का असर ना हो, ये हो नहीं सकता। तो आज की जो दुनिया है, क्योंकि रहते तो सब दुनिया में ही है ना, यहाँ तो थोड़े दिन के लिए आए तो यहाँ तो कोई ऐसा डिस्ट्रैक्शन है नहीं, लेकिन दुनिया में तो आज देह अभिमान की दुनिया है, तो लोग अपने अपनी देह के प्रति आकर्षित करने के लिए कितने तरीके अपनाते हैं, है ना। वो ऐसे कपड़े पहनेंगे, ऐसे बाल बनाएंगे, ऐसा मेकअप करेंगे कि ना चाहते हुए भी आप उनको देखो। और आपके पास आसपास जो भी मीडिया है, चाहे टीवी है, मोबाइल है, हा? उसमें ये सब दृश्य बहुत कॉमन है, आम है। तो कहां भी अगर आप देह में फंसे तो बाबा क्या कहता है कि देह में अगर बुद्धि गई तो हमारी किर्मणा आई, मतलब मनसा वाचा कर्मणा, तीनों लेवल पर प्यूरिटी चाहिए ना। वैसे हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, लेकिन अगर मनसा दृष्टि वृत्ति भी गई तो क्रिमिनल आई हो जाती है, और आत्मिक दृष्टि वृत्ति है तो सिविल आई है, साकार मूल्यों में हम सुनते हैं ना। तो अगर वो भी है, अगर दृष्टि वृत्ति भी चंचल होती है, किसी की देह के प्रति हम प्रभावित होते हैं, आप कोई तो नेचुरल रूप से ही ब्यूटीफुल होते हैं, किसी की पर्सनालिटी ही ऐसी होती है ना, किसी की आंखें अच्छी होंगी, किसी के फीचर्स अच्छे होंगे, किसी का रंग गोरा होगा, किसी के बाल अच्छे होंगे, तो हर एक इंसान को कुछ ना कुछ तो विशेषता मिली हुई ही होती है, चाहे शारीरिक स्तर पर भी हो, चाहे गुणों के स्तर पर भी हो, शरीर में नहीं तो गुण के आधार पर कुछ बहुत अच्छे होते हैं तो उनसे भी हम प्रभावित होते हैं। किसी भी स्तर पर अगर हम किसी से प्रभावित हुए तो उनकी तरफ हमारा झुकाव होगा, माना ये अच्छे लगते हैं। शब्द क्या होता है, क्या होता है, अच्छे लगते हैं। तो बाबा कहता है ये काम विकार का अंश प्रकट होता है। तो अच्छे लगते हैं माना फिर हम उनसे मिलना चाहेंगे, उनसे बात करना चाहेंगे, उनसे उठना बैठना चाहेंगे, और अगर वो थोड़ा सा ज्यादा बढ़ेगा तो वो क्या हो जाएगा, फैमिलियरिटी, और फैमिलियरिटी फिर धीरे धीरे लगाव में बदल जाती है ना, फिर लेन देन भी शुरू हो जाता है ना? जिनसे भी हम ज्यादा संबंध संपर्क बढ़ाते हैं तो वो कहीं कहीं लगाव में बदल सकता है। और अगर लगाव में बदला तो बाबा कहता है उसका असर हमारे योग पर आ जाएगा, वो निशाने हैं। तो किसी भी आत्मा में अगर बुद्धि जाती है और कोई हमें इशारा देता है, कोई भी एक्स्ट्रा, बाबा कहता है अच्छे हैं तो सब अच्छे हैं, ऐसे नहीं कि ये खास अच्छे हैं और ये अच्छे नहीं हैं। लेकिन अगर ये मेरे लिए एक्स्ट्रा स्नेह के पात्र हैं या एक्स्ट्रा हम उनकी तरफ झुकते हैं, तो उसको बाबा कहता है कुछ दाल में काला है। तो लोग भी कई बार हमें इशारा देते हैं, दुनिया में भी ऐसा होता है, किसी का थोड़ा भी एक्स्ट्रा संबंध होगा ना किसी के साथ, लौकिक दुनिया में भी नहीं छोड़ते हैं, ये तो ब्राह्मणों के लिए तो प्यूरिटी की इतनी महत्व है, लेकिन बाहर की दुनिया में भी कोई किसी के साथ ज्यादा उठेगा बैठेगा आएगा जाएगा तो कहेंगे ये ठीक नहीं लगता है, आप इसको ठीक करो। तो फिर क्या कहते हैं, नहीं बस ऐसे ही बात करते हैं और कुछ है नहीं। तो बाबा कहता है मानो किसी ने आपको इशारा दिया, किसी ने नोट कर लिया आपका और आपको इशारा दिया और आप समझते हैं नहीं ऐसा तो कुछ है नहीं, ऐसा समझते भी हैं ऐसा कुछ नहीं है, पर अगर किसी ने इशारा दिया तो फिर अगर कुछ नहीं है तो कुछ नहीं कर दो, माना नहीं है माना फिर नहीं ही है, उसको खत्म ही कर दो ताकि दूसरी बार उसको कहने का मौका ही ना मिले। पर अगर हम स्पष्टीकरण देना शुरू कर देते हैं, ज्यादातर स्पष्टीकरण हम देते हैं, तो फिर हम अपनी पाप की लकीर को लंबा कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं ये विकार ऐसा है कि इसके लिए स्वयं पर ही आपको कड़ी दृष्टि रखनी पड़ेगी, स्वयं को खुद ही दोषी मानना पड़ेगा, कोई दूसरा उंगली उठाए नहीं, मुझे ही खुद को रियलाइज करना है और चेंज करना है। और अगर नहीं हुआ तो ये ऐसा है कि महा महा पाप है, 100 गुना दंड बाबा कहता है। और बाबा कहता है ये 5वीं मंजिल से गिरने के समान है, साकार मूल्यों में तो कितने कड़े शब्द बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं कि कमाई चट हो जाती है। अब तक आपने कितना भी ज्ञान का अनुभव किया है, कितना भी योग का, योग से शक्तियों का अनुभव किया है, बाबा से प्यार का अनुभव किया है, वरदानों का अनुभव किया है, लेकिन अगर एक बार भी इस विकार में बुद्धि गई तो वो सब खत्म, फिर आपको दोबारा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। इसीलिए कहा 5वीं मंजिल से गिरने के समान है। और इसको बाबा कहता है चढ़े तो चाके वैकुंठ रस और गिरे तो फिर जब इतना बाबा कहता है कि ये हमारे लिए नुकसान करने वाला है कि हम अपना राजाई पद गंवा देते हैं, अगर व्यक्ति बार बार उसमें जाता है उस दृष्टि वृत्ति में तो राजाई को प्राप्त नहीं कर सकता। और फिर ये भी बाबा कहता है कि अपने आप को क्या समझो उस समय, कैसे परिवर्तन लाएंगे, तो कैसे कड़ी नजर रखें अपने ऊपर कि जरा भी बुद्धि अगर जाती है देह में तो समझो, मैंने एक मुरली में बाबा ने कहा था कि मैंने सिर पर क्या उठा लिया, एक जमादार जैसे कचरे का टोकरा उठाकर जाता है, तो मैंने क्या उठा लिया, वो उठा लिया, एक तरफ देखो कि ताज पहना हुआ चित्र है, हम देवी देवताओं के रूप में ताज पहने हुए हैं, और एक तरफ क्या है, कचरे का टोकरा उठाए हुए, तो पसंद आएगा, तो तुरंत क्या होगा, बुद्धि बदल जाएगी। तो अपने लिए खुद ही खुद को सजा दो अगर कभी ऐसा कमजोरी आती है, और अगर नहीं तो फिर ये विकार कहां ले जाने वाला है आपको, पुरानी दुनिया में। क्योंकि अगर कोई भी ब्राह्मण ज्ञान छोड़कर जाते हैं तो यही कमजोरी कहीं ना कहीं उनके अंदर होती, जिसको बाबा कहता है आश्चर्यवत सुनंती कथंती। और फिर तो हम तो बाबा के पक्के निश्चय बुद्धि बच्चे हैं ना, तो फिर हमें इस बात को अंडरलाइन करना है कि कहां भी अगर मेरी कमजोरी आती है और प्यूरिटी की रॉयल्टी किस रूप में आएगी। बाबा कहता है जो प्यूरिटी की पर्सनालिटी है वो रॉयल्टी का अनुभव कराती है। जो भी पर्सनालिटी वाले होते हैं वो रॉयल होते हैं। तो रॉयल आत्माओं की क्या विशेषता होती है? वो उनकी सूरत और सीरत में अनुभव होगी, उनके चलन और व्यवहार में वो अनुभव होगी, पर्सनालिटी भी। और क्योंकि जो प्यूरिटी है उसकी एक झलक फलक होती है ना चेहरे पर। जो भी ब्राह्मण हैं और जो प्यूरिटी का एक्यूरेट पालन करते हैं उनके चेहरे पर वो प्यूरिटी की चमक दिखाई देती है, जिसको हम रूहानियत भी कहते हैं। कोई भी ब्राह्मण जो लौकिक वाले लोग होते हैं उनसे अलग दिखते हैं, दिखते नहीं दिखते? आप 100 लौकिक लोगों के बीच में एक ब्राह्मण को खड़ा कर दो, फर्क समझ में आएगा नहीं आएगा? तो क्या फर्क होता है? वही प्यूरिटी का, कि हमारी जो आत्मिक दृष्टि वृत्ति है या हमारी जो रूहानियत है वो हमको उनसे न्यारा बनाती है। और केवल हम ही नहीं, वो भी वो समझ पाते हैं, दूसरे भी समझ पाते हैं कि ये हमसे न्यारे हैं, हमारे जैसे नहीं है, इनका सोचना बोलना व्यवहार हमसे अलग है। और उनकी नेगेटिविटी का प्रभाव हमारे पर नहीं पड़ेगा। आज का वरदान था ना कि कितने भी तमोगुणी वाइब्रेशंस के अंदर हम हों, कितना हम दुनिया में जाते हैं तो तमोगुणी वाइब्रेशंस के बीच में ही तो होते हैं, हमारे आसपास कोई पवित्र लोग तो नहीं है। तो फिर अगर हम शक्तिशाली नहीं हैं तो उनका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ जाएगा। फिर कई बार हम एक्सक्यूज भी देते हैं, क्या करें, लोग ही ऐसे थे ना, बात ही ऐसी थी ना, वातावरण ही ऐसा था ना। तो हम ऐसा कह सकते हैं क्या हमारा प्रभाव पड़ना चाहिए, उनका प्रभाव पड़ना चाहिए? कौन विश्व परिवर्तक है? एक बार हमारे साथ ऐसा हुआ, हम गए विदेश पहली बार, अमेरिका जाना हुआ, बहुत साल हो गए, 15-20 साल हो गए इस बात को। तो वहां पर जहां हम सेंटर पर थे, क्योंकि विदेश की कल्चर हम सब जानते हैं, अब तो भारत में भी विदेश की कल्चर आ गई, उस समय तो इतना नहीं था क्योंकि स्मार्टफोन्स नहीं थे उस समय। स्मार्टफोन आने के बाद तो सारी दुनिया ही एक जैसी हो गई अभी। तो फिर वहां पर हमें कोई, वहां सेंटर की जो बहन थी उनको मेयर ने बुलाया था। आज भी बाबा ने मेयर को याद किया है मुरली में। तो मेयर का जन्मदिन था और बहनों का संपर्क होता है शहर के जो भी वीआईपी होते हैं, तो उसने उनको जन्मदिन पे इनवाइट किया था। तो मैं थी सेंटर पर, तो बहन ने मुझे बोला आप भी चलो मेरे साथ, सेवा होगी, आप मधुबन से आए हो। तो मैंने कहा ठीक है, पर उसने कहा कि देखो ये विदेश है और यहाँ पर भारत जैसी पार्टी नहीं होती है, हाँ तो कहीं आपको खराब तो नहीं लगेगा। उसको लगा पता नहीं उसको कैसा लगेगा। तो मैंने कहा कि नहीं ठीक है ना, बाबा ने हमें ज्ञान दिया है, समझ दी है, और हम तो सेवा के लिए जा रहे हैं, तो हम क्यों ध्यान देंगे उनकी बातों पर, वो जो भी करे अपनी पार्टी में। तो फिर हम गए वहां और वहां पर सारा वही माहौल था, भले शहर के अच्छे लोग थे क्योंकि नेचुरली मेयर है तो उसका कनेक्शन जो है वो अच्छे लोगों से होगा, तो उनके फ्रेंड्स थे, उनकी फैमिली थी और सब। पूरा प्रोग्राम चला, केक वगैरह भी काटा उन्होंने, हम भी मिले लोगों से, बहन ने परिचय कराया, हमारी बातचीत हुई सबसे। पर माहौल तो वही था जो विदेश का होता है, उनका मिलना भी अपनी तरह का है। अब वो हमारे जैसे नमस्ते करके नहीं मिलते हैं ना, वो तो सीधा ही मिलेंगे तो हाथ भी नहीं मिलाएंगे, हाथ से भी ज्यादा गले लग के ही मिलेंगे, फिर चाहे वो कोई भी हो। और फिर ड्रिंक करना तो बहुत कॉमन सी बात होती है विदेश के अंदर, और कपड़े तो उनके सबको पता ही है क्या होते हैं। तो मतलब ऐसी ही थी पार्टी वो। पर हम रहे 1 घंटा वहां पर और फिर जब पूरा हुआ उनका प्रोग्राम, मिल करके हम निकलने लगे जो भी थे वहां पर। तो जो मेयर और उनकी फैमिली थी, जब हम निकल रहे थे तो फिर उन्होंने हमें कहा अपनी तरफ से, जैसे कमेंट कहते ना, कहते हमारी आज की पार्टी में, मेरी तो वाइट ड्रेस ही थी लेकिन वो बहन ने फिर भी अपनी साड़ी के ऊपर एक कलर जैकेट डाला हुआ था, वो विदेश के हिसाब से उन्हें कुछ ऐसा रखना पड़ता है। उन्होंने कहा कि हमारी आज की पार्टी में आप दोनों एंजल की तरह थे, तो हमारे वाइब्रेशन बिल्कुल अलग फील हुए उनको। तो हम क्यों एंजल लगे उनको, क्योंकि हम उनके जैसे नहीं थे। तो अपने आप लोगों को फील हो जाता है कि ये हमारे जैसे नहीं है, हमसे अलग है, तो हमारा प्रभाव पड़ना चाहिए। अब वातावरण तो तमो प्रधान ही था ना, कोई सतो प्रधान तो नहीं था, लेकिन हमारा प्रभाव उन पर पड़ा। हमारा तो लक्ष्य था कि हमें इनकी सेवा करनी है, हम जिन भी आत्माओं के बीच में आए हैं, तो हमने उनको देखा ही नहीं कि वो किस तरह से पहने हुए हैं, क्या खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन हमें उनको वो वाइब्रेशन का अनुभव कराना है जो रूहानियत का है। तो इसीलिए प्रभावित नहीं होना है किसी भी बाहर की आत्मा से। बाबा कहता है कि जो भी आत्मा, माना कई बार गुणों से भी अगर वो प्रभावित करती है हमें, इसके गुण बहुत अच्छे हैं। ब्राह्मण परिवार में हमारी दैहिक दृष्टि तो नहीं होती, ब्राह्मण परिवार में कहाँ अटकते हैं, ये बहुत अच्छा ज्ञान सुनाती है, इसका योग बहुत अच्छा है, ये पालना बहुत अच्छी करती है, बहुत स्नेही सहयोगी हैं हमारे, कोई भी बात दिल की इनसे कर लो, मन हल्का हो जाता है ना, ऐसी ऐसी बातें हमें प्रभावित करती हैं। और फिर क्या होता है, अब वो दुनिया वाला तो छोड़ दिया हमने, कहाँ फंसने लगे, लौकिक से अलौकिक में। बाबा कहते हैं वो लोहे की जंजीरें, उनको तो छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ जो सोने की चेन है, या लौकिक हमारा संबंध क्या है, सोने की चेन की तरह है। तो फिर एक तो चाहिए किससे हम दिल की बात कर सकें, चाहिए ना, चाहिए है ना, फिर मेल फीमेल की बात नहीं, एक सखी तो होना ही चाहिए, एक साथी कोई ना कोई तो हो, या तो कंपेनियन हो या फ्रेंड हो, एक तो कोई हो जिससे हम अपना दिल की बात कर सकें। तो चाहिए या नहीं चाहिए, क्या कहेंगे, जो समझते हैं चाहिए वो हाथ उठाओ। नहीं नहीं, उठाओ उठाओ, अच्छे से उठाओ। हाँ चाहिए, और बाकी को नहीं चाहिए, जिनको बिल्कुल नहीं चाहिए वो हाथ उठाओ। अच्छा, तो बाकी सब बीच में है, समझ में नहीं आ रहा कि चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें भी थोड़ों ने हाथ उठाया, उसमें भी थोड़ों ने हाथ उठाया। तो क्या सोचते हैं फिर, जब मन भारी होता है किसी भी बात को लेकर। अब ऐसा तो नहीं है कोई समस्या नहीं आती हमारे जीवन में, बातें तो आती ही रहती हैं, और मन भारी हो गया, हम उलझन में आ गए, थोड़ा दुखी हो रहे हैं, तो बाबा को सुना सकते नहीं सुना सकते। तो बाबा हमेशा कहते हैं कि अगर बाबा से सर्व संबंधों का अनुभव आपने किया है, सिर्फ ज्ञान से समझा नहीं है, एक तो ज्ञान से हम समझते हैं कि बाबा से हमारे सर्व संबंध हैं, नहीं, लेकिन अनुभव किया है अगर आपने समय समय पर, तो बाबा भले ही निराकार है, आकार है, लेकिन फिर भी आपको साकार जैसा ही अनुभव कराएंगे। भक्तों को भी भगवान अनुभव कराता है, तो आप तो बाबा के डायरेक्ट बच्चे हो। तो फिर कई कहते हैं जी योग ही नहीं लगता उस समय, जब मन परेशान होता है तो बाबा को याद ही नहीं कर पाते हैं। अच्छा चलो, बाबा को सुना भी दिया तो पता नहीं बाबा ने सुना कि नहीं सुना। अच्छा, अगर बाबा ने सुना भी है तो जवाब तो नहीं मिल रहा, तो कोई जवाब देने वाला तो चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए। हाँ, तो ये तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, फिर क्या करें। तो बाबा पर अगर निश्चय है हमारा, यहाँ पर हम थोड़ा भी संशय में, ये सारी बातें सोचते हैं ना, तो इसका मतलब सूक्ष्म में संशय आ रहा है, और संशय आया और हमने किसी आत्मा को सहारा बनाया, तो बाबा किनारा कर देता है। बाबा को पता है अब इसने इस आत्मा को सहारा बना लिया, मेरी जरूरत नहीं है, तो बाबा साक्षी हो जाता है। लेकिन अगर बाबा पर पूरा निश्चय है हमारा, तो थोड़ी परीक्षा हो सकती है। भगवान है, वो इतनी ऊंची प्राप्ति करा रहा है हमको, तो थोड़ा बहुत पेपर होगा कि नहीं होगा, कुछ निश्चय का पेपर होगा या नहीं होगा, हो सकता है, और वो भी ज्यादा लंबा नहीं होता है, थोड़ा समय के लिए पेपर होता है, और फिर वो प्रॉब्लम हमारी ऐसे सॉल्व होगी जैसे मक्खन से बाल, पता भी नहीं चलेगा कि हमने कैसे उसको पार कर लिया, क्योंकि शक्ति देने वाला कौन है, सर्वशक्तिमान कौन है, और नहीं तो कोई आत्मा निमित्त बन जाएगी, कोई ऐसा आ जाएगा आपके कि आपको लगेगा ही नहीं कि लेकिन किसने निमित्त बनाया, बाबा ने उस आत्मा को निमित्त बनाया। ऐसा किसी को कभी अनुभव हुआ है ना, पूरा निश्चय बाबा पर रखा और बाबा ने ऐसे निकाल दिया, वो हाथ उठाओ, देखो कितने हैं जिन्होंने पहले हाथ उठाए, उससे ज्यादा हाथ उठ रहे हैं। तो अभी आप समझ सकते हो कि निश्चय है, हमारे को संशय नहीं आना चाहिए। अगर हमको पूरा निश्चय है तो बाबा हमारे लिए सदैव हाजिर हैं, और संपूर्ण पवित्रता यही है, एक बाबा दूसरा ना कोई। किसी इंसान में कभी बुद्धि जानी ही नहीं चाहिए, मेरा तो एक बाबा, बाबा ही मेरा संसार है, और व्यक्ति वस्तु में भी नहीं। बाबा की तरह अगर वस्तु की भी कामना होती है तो वो भी काम विकार का अंश है। तो इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति, हद की कामनाओं में भी बुद्धि जाती है, वो भी काम विकार का अंश, उसमें भी चाहिए चाहिए चाहिए। एक होता है मनुष्य के लिए चाहिए चाहिए ना, और एक होता है वस्तुओं के लिए चाहिए चाहिए। तो कहां भी कामना आ रही है, चाहे व्यक्ति से आ रही है चाहे वस्तु से आ रही है, तो भी वो काम विकार का अंश ही प्रकट होता है। तो मेरी कंपनी भी बाबा है और मेरा कंपेनियन भी बाबा है। तो जो पवित्र आत्मा है उसका क्या अनुभव होगा, पाना था सो पा लिया, अब उसके आगे मुझे और कुछ पाने की जरूरत नहीं। वो मन से भरपूर होंगे, मन से भरपूर, समझ सकते हैं ना। स्थूल में हमें सर्व प्राप्तियां है या नहीं, स्थूल में कमी हो सकती है, जो हम चाहते हैं वो सब साधन हमारे पास नहीं है, या जो वस्तुओं की हम इच्छा रखते हैं वो सब हमारे पास नहीं है। तो एक होती है बाहर की भरपूरता और एक होती है मन की भरपूरता। तो बाहर की भरपूरता नहीं भी है लेकिन मन की भरपूरता पर उसका असर नहीं आएगा, हो सकता है नहीं हो सकता, हो सकता है ना। आज दुनिया में जो सन्यासी हैं वो कैसे जीते हैं, हमें तो बाबा ने सब छुट्टी दी है ना। आप जैन मुनियों को देखो, भगवान के लिए वो कितना त्याग का जीवन जीते हैं, देखा है ना जो जैन मुनि होते हैं। बाबा ने तो हमें जो दुनिया वाले जिस जितना साधन सुविधाओं में नहीं रहते उससे ज्यादा तो हम रहते हैं, इतना बाबा ने हमें स्वतंत्रता दी है कि आप यूज करो अगर है तो, लेकिन कैसे यूज करो, कैसे यूज करो, न्यारा और प्यारा बनकर, हाँ साधन में फंस नहीं जाओ, आपको वो साधना की स्थिति से नीचे नहीं ले आए, बल्कि आपकी साधना में वृद्धि में वो सहायक हो, ऐसे उसको यूज करो। तो बाहर में हो सकता है कि नहीं हो हमारे पास, किसी के पास है किसी के पास नहीं है, लेकिन अगर मन से भरपूर है तो हम ना में भी हाँ का अनुभव करते हैं, हमें लगता ही नहीं है कि मेरे पास इस चीज की कमी है। तो उस चाहिए चाहिए से हम निकल जाते हैं, जो कहा ना, जो हमें ये फीलिंग है कि भगवान को पा लिया, माना हमने सब कुछ पा लिया, उसकी अविनाशी प्राप्तियां हमारी प्राप्तियां हैं। भगवान ने तो हमें बेहद की प्राप्तियां कराई हैं और अनेक जन्म हमारे साथ चलने वाली हैं। तो जब वो फीलिंग है हमारी, तो फिर ये छोटी छोटी हद की प्राप्तियां हैं या नहीं उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक बार ऐसे ही संत रैदास के जीवन की घटना है कि भक्त कैसे अनुभव करते हैं। तो संत रैदास ऐसे संत थे कि वो बहुत साधारण, बहुत ही गरीब थे वो, और बहुत साधारण रीति से एक झोंपड़ी बनाकर रहते थे और जूते सीलने का काम करते थे, मोची थे वो, और जो उससे कमाई होती थी उसी से उनका खाना पीना चलता था। तो एक बार उनके कोई साथी संत आए तो वो उनके पास आकर बैठे, और जब उन्होंने देखा उनकी स्थिति को तो उनको लगा ये कैसे रहते हैं, इतने महान संत हैं और देखो कितना अभाव में जी रहे हैं ये। तो उनके पास पारस मणि थी, तो पारस मणि ऐसी मणि होती है कि अगर लोहे को छुआ दो तो वो सोना हो जाता है। तो उसने रैदास को कहा कि देखो ये पारस मणि आप रखो और आप इससे सोना बनाओ और अपना ये सब ठीक करो, आप अच्छे से रहो, आप क्यों इतना भाव से रहते हो। उसने कहा मुझे पारस मणि नहीं चाहिए, मैं भगवान ने जो मुझे दिया है उसमें मैं खुश हूँ, मैं इसमें राजी हूँ, मुझे कभी इच्छा नहीं होती कि मेरे पास ये हो, मैं संतुष्ट हूँ। तो उन्होंने फिर भी जबरदस्ती उसको दिया, उसने कहा नहीं आपके पास होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं चाहिए, तो वो जबरदस्ती उनका एक आला बना हुआ था वहां पे रख दिया उन्होंने। उन्होंने कहा कि नहीं आप इसको यूज करना और फिर मैं थोड़े दिनों के बाद आऊंगा फिर ले जाऊंगा। और वो जो पारस मणि है वो उन्होंने उसको छुआ भी नहीं, वो वहीं पड़ी रही। थोड़े दिनों के बाद वो आए, उन्होंने कहा अब तो इन्होंने अच्छे से अपना वो सोना बनाकर अपना सब कुछ ठीक ठाक कर लिया होगा, अच्छे से रह रहे होंगे, लेकिन जब आके देखा तो सब कुछ वैसा का वैसा ही है। तो उन्होंने कहा कि कहाँ है वो पारस मणि, क्या किया आपने। कहा जहाँ आप रख के गए थे वो वहीं पड़ी हुई है, क्योंकि मुझे उसकी जरूरत ही नहीं है। तो भगवान की उन प्राप्तियों में वो इतने खुश थे, माना इतना वो अपने आप को भरपूर कर रखा हुआ था, महसूस किया हुआ था उन्होंने कि उनको वो स्थूल प्राप्तियां चाहिए ही नहीं। तो हम देखते हैं कि जो दुनिया में भी जो सन्यासी होते हैं, जो सच्चे सन्यासी होते हैं ना, बाकी तो आज के तो अलग बात है, तो वो कभी भी अभाव का अनुभव नहीं करते, लेकिन फिर भी आनंद में जीते हैं कि परमात्मा की भक्ति या स्मृति से उनको इतना आनंद होता है ना। जैसे महात्मा बुद्ध महलों में पैदा हुए, लेकिन क्या किया उन्होंने भगवान के लिए, अपने महलों का त्याग कर दिया। या महावीर स्वामी भी महलों में पैदा हुए, यानी राजकुमार थे, दोनों ही राजकुमार थे, और दोनों ने क्या किया, भौतिक सुखों का त्याग करके कहाँ आ गए, वो ईश्वरीय सुख को पाने के लिए सब भौतिक सुखों को छोड़ दिया। ब्रह्मा बाबा को भी तो हम सुनते हैं, हमारी जो भी दादियां सब बहुत अच्छे परिवारों के थे ना, बाबा खुद ही ज्वेलर थे, लेकिन जब शिव बाबा मिले, बाबा की प्राप्ति हुई, ईश्वरीय सुख मिला, वो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किया, तो पूरा जीवन ब्रह्मा बाबा ने कैसी लाइफ जी, कैसा जीवन जिया, सादा जीवन, उच्च विचार वाला जीवन जिया बाबा ने कभी भी। आज तो कितने साधन है, बाबा के जमाने में तो कुछ भी नहीं था, लेकिन कैसे था बाबा का जीवन, संपूर्ण पवित्र जीवन था। बाबा ने हमें कहा ना, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी बनो, यही संपूर्ण पवित्रता की स्थिति है। तो वो हमें अपनी स्थिति को अनुभव करना है, वही प्यूरिटी की पर्सनालिटी हमारी बनती जाए, जो बाबा ने किया, जैसे हमारी दादियों ने फिर बाबा को पूरी तरह से फॉलो किया। कहा ना कि ब्रह्माचारी बनना है, ब्रह्मा बाबा ने जो किया वो हमें करना है। और बाबा प्यूरिटी में एक बात और कहते हैं कि प्यूरिटी की पर्सनालिटी में रियलिटी भी होगी। पवित्रता का संबंध स्वच्छता से भी है, सच्चाई सफाई से भी है। तो जो पवित्र आत्माएं होंगी वो कभी भी अपवित्र चीज को, यानी सूक्ष्म बात है ये, स्थूल की बात नहीं, दुनिया वाले तो क्या है कि किसी शूद्र को टच करेंगे तो उसको अछूत मानते हैं, लेकिन वो मतलब नहीं, लेकिन कि कोई भी अपवित्र संकल्प को मन से टच भी नहीं करेंगे। तो सदा ही मन में स्वच्छ और सच्चे होंगे। तो जैसे शिव बाबा सत्य है, शिव बाबा सत्यम शिवम सुंदरम है ना, बाबा ही सत्य ज्ञान से हमें सतयुग में ले जाते हैं, या सत्य नारायण की कथा सुनाते हैं, या हम गॉड इज ट्रुथ कहते हैं, तो सत्यता भगवान की विशेषता है। तो वही सत्यता की शक्ति वो आत्माएं अपने अंदर अनुभव करती हैं। तो अपने अंदर भी वो वही है, और बाहर भी वही। सच्चाई का मतलब ये है कि अंदर बाहर एक जैसा, अंदर एक बाहर दूसरा नहीं। कलयुग का व्यवहार क्या होता है, अंदर कुछ और होते हैं और बाहर कुछ और व्यवहार करते हैं। तो फिर क्या कहते हैं, क्या कहते हैं ऐसे व्यवहार को दुनिया में, क्या कहते हैं? कहावत के रूप में कहते हैं, मुख में राम और बगल में छुरी। सामने तो बहुत अच्छा मीठा मीठा बोलेंगे और जैसे ही पीठ पीछे आपकी बुराई करना शुरू कर देंगे या आपके प्रति कोई भी जो भी भाव है। तो ब्राह्मण आत्माएं कभी भी इस तरह का व्यवहार करने वाली नहीं होंगी। अगर पवित्रता है तो, अगर अभी हम पुरुषार्थी हैं तो वो एक अलग बात है। कई बार कई लोग झूठ का सहारा लेते हैं अपने आप को बचाने के लिए। कैसे बचाते हैं, मानो मेरे से कोई गलती हो गई, बाबा की श्रीमत के विरुद्ध कोई काम हो गया और मुझे पता है, हर एक को पता होता है कि मेरा कर्म ये ऐसा था जो नहीं होना चाहिए। तो बाबा तो कहता है सच सच सुना दो। अगर बाबा को हमने सच सुना दिया है ना, अपना चार्ट देने के लिए बाबा क्यों कहता है, इसीलिए कहता है कि अगर हमने बाबा को सच सुना दिया तो हमारा आधा तो माफ हो जाएगा और भी जो है उसके लिए भी हमें शक्ति मिल जाएगी। लेकिन बाबा को हमने सुना दिया और मानो कई बार वो निमित्त आत्माओं के सामने आ जाता है किसी भी कारण से, या जिनको नहीं पता चलना चाहिए उनको पता चल जाता है, तो फिर हम उसको सिद्ध करना शुरू कर देते हैं कि हम झूठ बोलकर अपने को बचाते हैं, क्योंकि अपना मान कम नहीं होने देना चाहते कि अगर इनको पता चल गया कि मैंने ये गलती की है या मेरी ये कमी है तो इनकी नजरों में हम कम हो जाएंगे, है ना, गिर जाएंगे या जो भी, मेरा मान कम हो जाएगा। तो फिर हम उसको कोशिश करते हैं छुपाने की, फिर उसके लिए चाहे जैसा भी झूठ बोलना पड़े या किसी दूसरे पर भी नाम लगा देना पड़े, तो ये सब युक्तियां करते हैं। तो बाबा कहते हैं चलो किसी इंसान के सामने तो अपना मान बचा लोगे आप, वो मान भी जाते हैं। बाबा कहते हैं इतने होशियार होते हैं कई कहानियां बनाने में कि झूठ को सच और सच को झूठ अच्छी तरह साबित कर देते हैं। जैसे दुनिया में भी गवाह होते हैं ना, किसी को जब होता है ना कोई अपराधी होता है उसके पीछे गवाह होते हैं, तो वो गवाह भी ऐसा काम करते हैं ना, तो उसके कारण निर्दोष को सजा हो जाती है। वो ऐसे ऐसे गवाही माना कैसे झूठ को सच और सच को झूठ कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं कि होशियार तो होते हैं कहानियां बनाने में, तो वो सब कर लेते हैं, लेकिन यहां अल्प काल का मान बचा लिया आपने, लेकिन भगवान से कुछ छुपा रहेगा? बाबा को पता है या नहीं है? तो बाबा को तो सब मालूम है। तो फिर भगवान के दिल पर हम नहीं रहते, क्योंकि वो सच्चे दिल पर राजी होता है। सच्चे दिल पर साहेब राजी, हमने कहां भी झूठ का सहारा लिया तो बाबा के दिल से हम नीचे आ जाते हैं और अविनाशी प्राप्तियों से वंचित हो जाते हैं। यानी जो सदा काल की प्राप्ति या कमाई हमारी होनी चाहिए वो फिर नहीं रहेगी। तो इसीलिए ये भी हमारा सूक्ष्म पुरुषार्थ है। कई बार इन चीजों को हम साधारण रीति से लेते हैं, ये तो चलता ही है ना, ये तो होता ही है ना, और फिर कई ब्राह्मण क्या है उसको युक्ति के रूप में लेते हैं कि ये तो युक्ति है। अगर हम युक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे तो हमें मुक्ति भी नहीं मिलेगी। तो किसी के कल्याण के लिए ना, बाबा ने मतलब जैसे होता है ना, किस स्थिति में, किस संदर्भ में, किस भाव से हमने वो बात की, उसका भी प्रभाव होता है कर्म की गति में। तो मानो अब कोई है जिसका परिवार ज्ञान में नहीं चलता, बहुत बंधन वाले, जैसे आज बाबा ने बंधन वाली माताओं को याद किया, तो बाबा तो नहीं कहता कि घर वालों की परमिशन के बिना हो ना। बाबा ने कहा अगर मेरे से नहीं भी मिले मानो, और घर में ही बाबा को बहुत याद करते हैं तो भी उनका पद ऊंचा है ना। ऐसे बाबा ने नहीं कहा कि हाँ घर में लड़ भिड़ के या आ जाओ, कैसे भी आ जाओ। बाबा ने क्या कहा, घर में रह करके भी याद करो अगर बंधन है तो। लेकिन फिर भी कोई बहुत ही लगन वाले हैं, आए बिना रह नहीं सकते, तो वो कैसे युक्ति करते हैं, वो बोलेंगे मैं अपने माँ के अपने मायके जा रही हूँ। कई माताएं हमें सुनाती हैं कई बार कि भाई घर वाले तो मानते नहीं, छुट्टी भी नहीं देते हैं, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी उसको अच्छा ही नहीं मानते। तो फिर हमें ऐसे आना पड़ता है कि हम कहते हैं मायके जा रहे हैं, और मायके जाने की बजाय फिर कहाँ जाते हैं, मधुबन आ जाते हैं। तो यूं तो मधुबन भी मायका ही है, हाँ मायके से भी ज्यादा ही है, क्योंकि बाबा तो हमें सब कुछ हाथ में खिलाता है। घर में तो आपको खुद बनाना पड़ता है ना, यहाँ तो सब बना बनाया मिलता ही नहीं मिलता। तो घर में माँ जैसे प्यार से खिलाती है रखती है, ऐसे बाबा भी हमें बहुत प्यार से। और आज बाबा ने कहा मात पिता है वो, भारत में ही हम उसको मात पिता के रूप में याद करते हैं, दुनिया तो उसको गॉड फादर कहती है। तो वो अनुभव तो हम करते हैं, लेकिन फिर ये युक्ति है आत्म कल्याण के लिए कि मुझे बाबा से लगन है, मिलन की इच्छा है, तो हमने ये झूठ बोला। तो इस झूठ को हम झूठ नहीं कहेंगे, तो क्योंकि ये इंटेंशन प्योर है इसीलिए। लेकिन अगर स्वार्थ के लिए हमने झूठ का सहारा लिया तो इसका मतलब हम सच्चाई से दूर हो गए। तो ये प्यूरिटी की रियलिटी माना, वो रॉयल्टी है हमारी पर्सनालिटी की। फिर बाबा कहता है कि प्यूरिटी माना सभ्यता वाले, सत्यता की भी सभ्यता हो। मानो हम सत्य बोल रहे हैं लेकिन कड़वाहट से बोल रहे हैं। कई लोग सच बोलते हैं तो थोड़ा जोश में आ जाते हैं कि नहीं मैं तो सच कह रही हूं या कह रहा हूं। तो लेकिन कहते हैं कि सच बोलो लेकिन प्रिय लगने वाला सच सच बोलो, है ना। संस्कृत में कहते हैं सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात ना बुरियात सत्यम अप्रियम। अप्रिय लगने वाला सत्य सत्य रह ही नहीं जाता है, तो ऐसा सत्य नहीं। तो सभ्यता से व्यवहार में आना, हमारे जो मैनर्स होने चाहिए, जैसे रॉयल आत्माएं हैं वो उनका चलना उठना बैठना खाना पीना सब सभ्यता वाला होता है। पता चलता है कि ये कोई बड़े घर के हैं। तो ऐसे ही हम कैसी पर्सनालिटी वाली आत्माएं हैं, कितनी श्रेष्ठ आत्माएं हैं, बाबा हमें कितना ऊंच बना रहे हैं। तो फिर हमारा कैसा होना चाहिए, हमारा व्यवहार चलन कैसा होना चाहिए, उसी तरह से हमारा जो भी अलौकिक है, जैसे आज बोला सारे लौकिक को अलौकिक में बदलो। साधारण नहीं होना चाहिए, अलौकिकता वाला होना चाहिए। देखना उठना बैठना चलना खाना पीना सब वो व्यवहार और चलन हमारा होना चाहिए। तो फिर हम चेक करें कि प्यूरिटी की कौन सी स्टेज पर हम पहुंचे हैं। हाँ, ये सब हमारे पुरुषार्थ के स्टेप्स हैं कि केवल ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं वहां तक ही पवित्रता है या उससे भी आगे, और यह संपूर्ण पवित्रता की स्टेज तक जो हमें पहुंचना है वो हमारा लक्ष्य है। तो बाबा ने कहा अगर हम अपने लक्ष्य को अपनी आंखों के सामने रखते हैं तो फिर साइट में कितने भी साइट सीन आ जाएं, उसको देखते हैं हम ध्यान ही नहीं देते कौन से सीन आ रहे हैं, क्योंकि सामने आंखों के सामने क्या है, मंजिल है। तो जब वो मंजिल हमारे सामने है, वो लक्ष्य बाबा ने हमें दे दिया, तो फिर आसपास कोई भी बातें कैसे भी लोग कैसा भी व्यवहार उसका असर हमारे ऊपर नहीं होगा। वो हमारे लिए एक साइड सीन है जिसे हमें देखते हुए भी नहीं देखना है और सुनते हुए भी नहीं सुनना है, उस पर हमें ध्यान ही नहीं देना है। ओम शांति।